ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, सुनाते चलो गुनगुनाते चलो, सुनाते चलो गुनगुनाते चलो,
ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो,
ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ऋषियों की ये पुण्य भूमि है भारतवासी जागो,
भारतवासी जागो,
आत्मशक्ति को पहचानो, आत्मशक्ति को पहचानो, हर व्यसन बुराई त्यागो,
हर व्यसन बुराई त्यागो,
ओ कांटों को कलियां बनाते चलो,
ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो,
ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। जन जन के मन पर छाया है नफरत का दियारा, घर घर में फैला दो प्रेम एकता का उजियारा, दीपक से दीपक जलाते चलो,
ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो,
ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो।
शांति। भारत में भागवत की कथाओं का बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण ने मधुबन में मुरली बजाई और उसकी गोपियों ने उसके ऊपर क्या हो गई, सभी न्यौछावर हो गई। ये कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो आज है द आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी, मुरली में रचनात्मकता। तो इसमें मुख्य तीन पार्ट है, एक तो मुरली सुनने में रचनात्मकता, मुरली पढ़ने में रचनात्मकता और मुरली सुनाने में रचनात्मकता। तो उस श्री कृष्ण को भगवान के रूप में देखा जाता है कि भगवान ने क्या की, मुरली सुनाई, और गोप गोपियों ने कौन सा सुख पाया, अतीन्द्रिय सुख। अब दिखाई तो है काठ की मुरली और सुख के बारे में कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पाया, लेकिन आज हमें पता पड़ता है जब स्वयं भगवान आकर बताते हैं कि मुरली क्या है, किसको कहेंगे मुरली, शिव बाबा की मुरली या ब्रह्मा बाबा की मुरली, मधुसूदन कहा जाता है कि परमपिता शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा जो महावाक्यों का उच्चारण करते हैं उसको हम मुरली कहते हैं। जैसे कोई सिक्का है उसके दो साइड होती है, वैसे एक तरफ शिव बाबा है और दूसरी तरफ ब्रह्मा बाबा, उसी को मुरली कहा जाता है। और 69 में जब बाबा अव्यक्त हुए तभी शिव बाबा ने यह क्लियर किया था कि अभी रिवाइज कोर्स होगा कि मुरली किसको कहेंगे, और अभी तो हम देख रहे हैं कि अव्यक्तवाणी भी रिवाइज हो रही है। तो मुरली सुनाने में रचनात्मकता, इसमें 10 पॉइंट बोला था। अभी अभी हमने इंग्लिश क्लास में सुना कि उस ड्राइवर ने क्या किया था, इतने लोगों की जान बचाई थी। क्यों? क्योंकि उसके बाजू में कौन बैठा था? एक यात्री बैठा था जो बोल रहा था कि आगे चलो आगे चलो। वैसे ही अभी आप सबको समझना है कि ड्राइवर इधर बैठा है और आप वही व्यक्ति हो, धक्का दे रहे हो। सो मुरली सुनाने वाले के लिए डायरेक्शंस, जैसे कि कहेंगे कि रचनात्मकता, डायरेक्शन शब्द नहीं यूज कर सकते, लेकिन कि कौन सी श्रीमत है, कि मुरली कैसे सुनाई जाए, कि हमें क्या लगता है कि कैसे सुनाई जाए। कभी कभी कुछ सेंटर्स पर देखा है कि बिल्कुल ही एज इट इज मुरली पढ़ी जाती है, बिल्कुल साइलेंटली और ओम शांति। और कहीं कहीं पे इतना अभी शोर तो नहीं कह सकते, आवाज भी नहीं, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत पूरी क्लास उसमें झूमती है और उसके बाद उनको गहरे मौन में जाना पड़ता है, इतना मना बहुत ही आवाज होता है। चलो दोनों विधियां देखने को मिली। तो मुरली सुनाने से पहले पहला पॉइंट हम देखेंगे कि इस मुरली को खुद पढ़ना बहुत आवश्यक है। मुरली अगर हमें दूसरे किसी को सुनानी है, एक व्यक्ति को सुनानी है, पांच व्यक्ति को सुनानी है, क्लास में सुनानी है, गीता पाठशाला है, या 50 लोगों के सामने भी आपको सुनानी है, तो आपको ऑफिशियल प्रोग्राम मिल चुका है तो आपको उसको पहले एक बार नजर करना बहुत आवश्यक है। तो पहली पॉइंट है, अगर आपको आज पता पड़ा है कि कल पढ़ के सुनानी है तो आज रात को भी हम पढ़ सकते हैं। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके ऊपर हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। एक तो खुद को समझना है। अच्छा, मना बड़ी दादी जी शाम को, रात को सोने से पहले भी पढ़ती थी, सुबह भी पढ़ लेती थी और फिर मुरली क्लास में। अच्छा, तो अगर आपको अभी अभी प्रोग्राम मिला है तो भी आप एक नज़र कर सकते हो, और क्योंकि बिना तैयारी किसी के सामने नहीं जाना चाहिए। और फिर उसको समझना है और बाद में ही सुनाना है। अगली जो पॉइंट है कि मुरली से पहले जो नियम हमें बताया है बाबा ने, कि मुरली सुनाने वाले को पहले क्या करते हैं, योग कराते हैं। तो ऑफिशियल जो है, हाँ, वो खुद भी योग करे 30 मिनट, 30 मिनट। अभी नियम ये है और प्रैक्टिकली देखा भी है कि अगर सुनाने वाला 30 मिनट वहां उसी संधि पर बैठकर योग करके बाद में सुनाए। योग माना क्या? नहीं, प्राइवेट नहीं, वहीं पर बैठकर, वही क्लास में संधि पर बैठकर, तो एक उस स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे। माना मुरली सुनते थे तो क्या हो जाते थे, वो गोप गोपिया अपनी सुधबुद हर जाते थे, जो भी काम उनके हाथों में है वो सब छोड़ के वो कहाँ पहुंच जाते थे, मधुबन में पहुंच जाते थे कान्हा के साथ। बिल्कुल हमें भी मुरली के समय कहाँ पहुंचना है, मधुबन में पहुंचना है बाबा के साथ, है ना। तो हमें जो भी हमारी बातें हैं, माताएं हैं तो उनको बच्चे याद आएंगे, कोई डॉक्टर है तो उनको अपने पेशेंट याद आएंगे, कोई वकील वकील है तो उनको अपने क्लाइंट्स याद आएंगे। तो हर एक को अपने अपने क्या होता है, कारोबार याद आता है, क्योंकि उसी समय हम क्या होते हैं, बड़े शांत होते हैं, वातावरण का भी सहयोग होता है और उस समय हमें वो भूले बिसरे काम याद आ जाते हैं। हाँ, तो अगला जो पॉइंट है वही है कि अलर्ट और एक्यूरेसी। मुरली सुनाने वाले को बहुत ही अलर्ट होना चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। जिस संदली पर हम बैठने वाले हैं उसका जो कवर है प्रेस किया हुआ है, अगर उसमें से धीरे से कॉकरोच निकले और हम सर्वशक्तिवान बीच में ही हम ही खुद डर रहे कॉकरोच से, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीजों का। हाँ होता है, होता है, हो सकता है। तो माना क्लीननेस हो, अलर्टनेस हो और एक्यूरेसी हो, जो मुरली पढ़ने के लिए बैठे हैं उनका ड्रेस कोड जो है प्रॉपर हो, बैच लगाने का ठिकान स्थान जो है योग्य हो, नहीं तो लाइट गई थी, ये हुई थी, पाउडर कहीं लगा हुआ है कहीं पे ज्यादा है, ये बातें भी होती है। फिर ऐसा ना हो कि हम किसकी गद्दी पर बैठे हैं, हम सिंहासन पर बैठे हुए हैं, हम बाप की गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो ये भी बातें बहुत मायने रखती है कि सामने वाला फिर उसका ध्यान हमारी उन स्थूल चीजों पर ना जाए। बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हमें और हमारी जो वाणी है उसमें एक हमारा जो टोन है, बॉडी लैंग्वेज है ना, बार बार हम किसी बात पर कटाक्ष ना करें, तो अलर्ट और एक्यूरेसी इसमें और आएगा कि उबासी ना आए। बाबा ने कई बार इस पर मुरली में बताया हुआ है, भले वो पिंकी सुनने वालों को आए तो आए, लेकिन सुनाने वाले को नहीं नहीं क्योंकि हम सुनने वालों को डायरेक्शन दे रहे कि बाबा ने कहा, हाँ दोष है उसमें, वो पॉइंट आगे है। हाँ देखो, बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि डांसिंग गर्ल का उदाहरण दिया है कि अगर वो सुनाने वाला इतना अच्छा है तो सामने वाले भी झूमने लगेंगे, सामने वाला भी अगर किसी मूड में, हमें क्या पता वो बेचारा किस परिस्थिति से गुजर रहा है, वहां के बैठ तो गया है, उतना पुरुषार्थ तो उसने कर लिया, बाबा ने उसको सामने लाकर बिठा तो दिया, लेकिन ऐसे न हो कि वो उससे ज्यादा बोर होए आपके सामने बैठ के, वही वही बातें हैं। तो अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट हम लेते हैं। अभी हमने अलर्ट और एक्यूरेस में क्या क्या देखा, ड्रेस कोड देखा, बैच, और हमारी बैठक कैसी हो, बिल्कुल सीधा बैठना है, ऐसे नहीं कि अभी संदलिया नहीं है, सोफा है तो धीरे धीरे खिसक जाते हैं, तो बिल्कुल ही अलर्ट और एक्यूरेसी से के साथ बैठना है जी प्रश्न है कि हम तो बड़ी रमणीकता के साथ मुरली सुना रहे हैं और सामने वाले कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल तवाही होकर बैठे हैं, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कांध भी नहीं हिला रहे हैं, बिल्कुल एक रोबोट की भांति बैठे हुए हैं, और फिर सुनाने वाले के संकल्प चलता है कि ऐसे क्यों बैठे हैं, मेरी कोई गलती तो नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि हम रमणीकता से सुना रहे हैं और ऐसे नहीं है, रमणीकता हमें लग रहा है लेकिन सामने वाले को नहीं लग रही है, तो उसके लिए रचनात्मकता, नवीनता क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए बीच बीच में प्रश्न पूछना जरूरी है उसको सामने। हम ऐसे नहीं कि हम टीचर है, स्पीकर है, हम ही बोलते जा रहे हैं, सामने वाले को पूरा उसमें इन्वॉल्व करना है। हाँ, प्रश्न पूछने के बाद भी सामने वाला उत्तर ही नहीं दे रहा है, बहुत ही वो सुन्न अवस्था में बैठा है और वो ऐसे बोल रहा है कि हमें प्रश्न भी नहीं पूछा हाँ तो देखो, इसके लिए गुलजार दादी ने डायरेक्शन दिया हुआ है, ज्ञान सरिता पार्ट 6 में उन्होंने कहा हुआ है, वो सुनने वाले के लिए दादी ने बताया है कि कुछ लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, बड़ा समझते हैं, और टीचर को समझते हैं तो छोटी है, अभी अभी आई है, तो दादी जी ने कहा है कि ये गलती बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप उसकी विशेषता को नहीं देख रहे हो, आप उसके फिजिकल रूप को देख रहे हो कि ये तो छोटी है और ये हमें क्या सुनाएंगे। प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है, हमारे सेंटर पर एक छोटी बहन सुना रही थी मुरली, बड़ी बहन जी कहाँ गई थी, और बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी के रूप में वो सामने बैठ गए। संडे का दिन था और मुरली का टाइटल था होली हंस, बनना है होली हंस। तो उन्होंने बताया होली माना होली का त्योहार हम जो मनाते हैं, और हंस माना हंस एक पंछी होता है, वो भी पता नहीं उनको वो क्या होता है वो भी पता नहीं। अब मैं तो सामने ही बैठा था, मैं तो हंस पड़ा और भाग गया वहां से उठ के नहीं, मैं तो हंस पड़ा और वहां से भाग गया। तो फिर बाद में मुझे डांट भी पड़ी, ऐसे थोड़ी करना होता है, वहां क्यों हंसे आप, इतनी अच्छी मुरली सुनाई उन्होंने। तो सामने वाले का क्या नहीं करना है, सामने वाले को सुना कौन रहा है, सुनने वाले के लिए ये डायरेक्शन है अभी कि हाँ सुनाने वाला कौन है। जैसे कि हम प्रैक्टिकल में एक एग्जांपल लेंगे, जैसे साउंड बॉक्स वहां रखा हुआ है, अगर वो कौन सी कंपनी का है, एप्पल का है या और कौन सी, वो जितना महंगा होगा जितना ब्रांडेड होगा उसने उसमें से क्या निकलेगी, वॉइस अच्छी निकलेगी। जो जितना पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास बहुत सारा शब्द का भंडार होगा, भाषा के ऊपर प्रभुत्व होगा, उसके पास अनुभव होंगे, सुनाने का तरीका होगा, अलंकारिक भाषा होगी, मधुर वाणी होगी, उतना सामने वाले को क्या होगा, अच्छा लगेगा और वो रमणीकता महसूस करेगा। लेकिन वो तो है तो एक साउंड बॉक्स ना, हमने देखा कि साउंड बॉक्स है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, कभी कभी हम उसको सफेद कवर से ढक भी देते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये क्या है, साउंड बॉक्स है, उसको सफेद कवर से ढका हुआ है, लेकिन बोलने वाला स्पीकर कौन है, माइक कौन है, अथॉरिटी कौन है, वो तो सुनाने वाला तो बाबा है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि वो व्यक्ति नहीं सुना रहा है, हम किसी व्यक्ति को सुनने के लिए नहीं जा रहे। दुनिया में सत्संग में हम देखते हैं तो वो गुरु याद आता है कि फलाना गुरु हमें पढ़ाएगा, गुरु सिखाएगा, अगर वो नहीं है तो सामने वाले नाराज हो जाते हैं। कई बार हमने भी देखा है कि फलाना स्पीकर नहीं है तो क्या होता है कि चले जाते हैं कि अरे वो कहा है, वो नहीं है तो हम चल। लेकिन हम किसकी क्लास सुन रहे हैं, शिव बाबा के। हमारा टीचर कौन है, शिव बाबा। तो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, एक के ऊपर फोकस नहीं करना है, सभी के ऊपर ध्यान देना है। कई अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, क्लास में बैठे हुए एक ही व्यक्ति की तरफ देखकर बोलते हैं, बात करते हैं, तो सभी के तरफ देखकर बात करनी चाहिए मुरली सुनाने वाले को। कभी कभी पॉजिटिव बात भी होती है कि फलाने व्यक्ति की महिमा करने लग पड़ेंगे तो मुरली साइड में रह जाती है और एक व्यक्ति की ही महिमा वहां होती है। या कभी कभी निगेटिव कि देखो ये पॉइंट बाबा ने आपके लिए कही है, आप ऐसी ऐसी गलती करते हो ना इसलिए बाबा ने आपको ये कहा है। पूरी क्लास के भरी क्लास में किसी एक व्यक्ति को फोकस करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, महिमा भी नहीं करनी है किसी की बहुत ज्यादा, ग्लानी भी नहीं करनी है कि जिसके बीच भगवान की महिमा रह जाए और उस व्यक्ति को ही हाईलाइट। हाँ, वो पॉइंट आगे आएगी। ये पॉइंट थी किसी के ऊपर कमेंट नहीं करनी है, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना। अगला पॉइंट है पांचवा, कि चारों सब्जेक्ट क्लियर हो। अब लौकिक में क्या होता है, हर 30 मिनट के बाद या 45 मिनट्स के बाद बेल बजती है, एक टीचर चला जाता है दूसरा आता है। इंग्लिश की क्लास खत्म हुई, मैथ के बाद हिस्ट्री। अभी यहाँ क्या है, बैठा हुआ एक ही टीचर है और टॉपिक हमारे सब्जेक्ट चार हैं और मुरली भी एक ही है, हमारा बुक भी एक ही है। तो सामने वाले को जो ये चारों सब्जेक्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये कौन से सब्जेक्ट की बात चल रही है, पूरा मिक्स न हो, खिचड़ी न हो, पूरा उनके आगे वो चारों सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए। अभी छठी बात है एक्स्ट्रा बातें। एक्स्ट्रा बातों में आ जाता है एग्जाम्पल हम देने जाते हैं और कहानियां या अपने ही अनुभव सुनाना या दूसरों के अनुभव सुनाना। उससे क्या हो जाता है, बाबा की जो लहर है, मुरली बाबा जिस टॉपिक पर सुनाने जा रहे हैं, क्रोध पर चल रही है, पवित्रता के ऊपर चल रही है, सेवा के ऊपर, एक लहर होती है हर मुरली में और वो लहर ही खो जाती है। हमारे खुद के एग्जाम्पल में, खुद ही इतने खुशी में और नशे में आ जाते हैं कि मुख्य बात दूर रह जाती है और सुनने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाबा ने क्या कहा है और इनका खुद का क्या है। तो लेकिन आजकल स्टूडेंट बड़े होशियार हैं, उनके हाथ में मुरली होती है तो उनको तुरंत पता पड़ जाता है कि ये मुरली के बाजू में जा रहे हैं, अभी मुरली नहीं मुरला चल रहा है। और कल भी हमने सुना कि मियां मिठू नहीं बनना है, अपनी ही बातें नहीं सुनानी। सेवेंथ है कि फिर उसके बाद ये नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। सेवेंथ टॉपिक लिया इसको अलग से कि मुरली में आने वाली जो कहावतें हैं, कहानियां हैं, वो हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तिजरी की कथा क्या है, अमर कथा, फॉल ऑफ पॉम्पिया और भी बहुत सारी जो कहावतें हैं, कहानियां हैं, उसकी अलग से बुक बनी हुई है, उसका स्टडी होना चाहिए जो मुरली सुनाता है। नहीं तो सामने वाला अगर प्रश्न करेगा और हम खुद ही मूंझ जाएंगे, तो ऐसे ना हो। तो हमें ये स्टडी होना बहुत जरूरी है, बाबा ने जो जो कहावतें कहानियां बताई हुई है, रूप बसंत है तो उसके बारे में क्या बाबा का कहने का अर्थ है। तो रूप बसंत की कहानी हमें एक बार पढ़ना जरूरी है, वो हमें खुद को क्लियर होगा तभी तो हम दूसरों को बता पाएंगे, और फिर क्या होगा, रमणीकता से साथ हम दूसरों को वो सुना सकेंगे। अभी क्या होता है कि कई बार पुराने ही स्टूडेंट होते हैं, अगर नया कोई स्टूडेंट है एक भी है तो उसके लिए हमें सुनाना होता है, तो बाकी जो 50 बैठे हुए हैं उनको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो नया बैठा हुआ है उसके लिए वो बात दोबारा से रिपीट हो रही है, आपको इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। आपको भी ऐसे समझना है, मैं भी नया हूं और बड़ी ही रमणीकता से सुनना है, सहयोग देना है बाजू वाले को, मुस्कुराना है। हमारा क्या जाता है, मुंह बना के बैठने से तो वातावरण और गंभीर हो जाएगा, वो देखेगा ये बाजू वाला इतना गंभीर क्यों है। तो हमें खग्गिया मारनी है खुशी में, हाँ बाबा ने कितनी अच्छी बात सुनी। दिखाने के लिए नहीं कि एक देखो एक सेवा है, दादी जी ने बहुत अच्छी रीति से बताया है कि एक दूसरे को देखते हैं कि देखो फलाना तो मुरली क्लास में नहीं जाता है, तो हमारे कारण क्या होती है, डिससर्विस होती है, ये नहीं होना चाहिए। हमें इतना उमंग उत्साह में और इतना एक्यूरेसी से मुरली में बैठना है, चात्रक बन के बैठना है, ऐसे नहीं कि हमें सब कुछ आता है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं और अपने ही एक अहंकार में बैठना है। तो सातवां पॉइंट, मुरली में जो अभी तो इंटरनेट के कारण, मोबाइल के कारण हम वेबसाइट पे डिक्शनरी भी है, इंग्लिश शब्द कौन कौन से है, उर्दू शब्द कौन से है, हिंदी शब्द कौन से है और उसका मीनिंग क्या है, तो उसकी बहुत अच्छी तरह से गहराई से डिक्शनरी भी है अलग से, सुनने वाले को सामने बैठना चाहिए, कोई बात नहीं, सुनाने वाला अलर्ट रहेगा ना उसके कारण। अगला पॉइंट है स्थिति, सुनाने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए। एक तो उसकी खुद की अलौकिक दिनचर्या होनी चाहिए, अगर वो अमृत वेला के ऊपर बोलने जा रहा है और खुद ही अमृत वेला कई दिनों से नहीं किया हुआ, हाँ जी उस दिन तो नींद ही नहीं आती, वो तो हो ही जाता है पूरा। उस दिन तो नींद ही नहीं आती अमृत वेला, तो क्या वो तो पूरा बाबा की गोदी में ही बैठ जाता है टॉपिक मिलने के बाद कि बाबा अभी आप ही संभालो। तो स्थिति हो, उसकी दिनचर्या हो और उसकी प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी हो, नहीं तो लोग कहेंगे देखो वो सुनाता तो है लेकिन प्रैक्टिकल में तो कुछ दिखाई तो नहीं देता है। तो और इसके साथ दादी ने कहा है कि सुनाते समय कि अगर मूड ऑफ है, अभी अभी किसी के साथ झगड़ा किया है और जाके बैठ गए मुरली सुनाने, तो मूड ऑफ करके, खुद का या किसी और का मूड ऑफ करके आप संदली पर जाकर बैठते हो, तो दादी जी ने कड़ा शब्द यहाँ पे यूज किया कि ये एक पाप है, ये एक पाप है कि हाँ समझते हैं कि हमारे तो ड्यूटी है, जरूरी नहीं ड्यूटी है, ऐसे कोई ड्यूटी नहीं दी हुई बाबा ने। हाँ दूसरे होते हैं ऑप्शन कई। हाँ जैसे देखो, जैसे हम नींद से उठे हैं तो क्या करते हैं, रिफ्रेश होने के लिए मुंह धुलाई करते हैं, पाउडर लगाते हैं, है ना, बिल्कुल उसी तरह। तो वही बताएंगे कि अभी अभी भले कुछ बात हुई है, तो पहले ही पॉइंट में हमने देखा था कि क्या करना है, दूसरे पॉइंट में कि क्या करना है, अलर्ट और एक्यूरेसी। तो हमें भी क्या करना है, बाबा को सॉरी करना है, मुंह धुलाई करने जैसा ही है, और सामने वाले व्यक्ति को भी, है ना, कि अभी हमें मुरली सुनानी ही है तो हर्षित मुक्ता की पाउडर लगानी है। पाउडर माना वो स्थूल पाउडर नहीं लगानी है, हमें हर्षित मुक्ता की पाउडर लगानी नहीं। तो हमें हर्षित मुक्ता की पाउडर लगानी है, खुद को मिरर के सामने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हाँ मैं रेडी हूं, तभी जाकर के हमें संधि पर बैठना है। अगला पॉइंट है वही, नाइन्थ पॉइंट है क्वेश्चन, पूछे गए प्रश्न का प्रॉपर आंसर देना। सामने वाले को ऐसे न लगे इसने तो हमें इग्नोर कर दिया। प्रैक्टिकल मैंने देखा था कि किसी एक व्यक्ति को की बात को इग्नोर किया गया और फिर वो उठ के चला गया कि मेरी बात तो सुनी ही नहीं। अभी जरूरी नहीं कि हर बार आपको सुननी चाहिए सामने वाले की बात, लेकिन यथा योग्य समय, हमें अपना समय भी देखना है, दूसरों को भी ये न हो, और सामने वाले को, हाँ सामने वाले को टाइम हम कह सकते हैं कि भाई हम आपको बाद में समझाएंगे अगर उस समय उसको नहीं हम बता सकते हैं तो। लेकिन ऐसे नहीं कि किसी को कट करना है, सामने से अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसका प्रॉपर आंसर देना है, और हाँ बाद में बताएंगे, बाद में चर्चा करेंगे। और जैसे लौकिक में डीएड बीएड लोग जो करते हैं, लौकिक में जो टीचर बनने के लिए बीए डीएड बीएड आगे आदि कुछ कुछ वो भी होता है। हाँ वो होता है, वो जो एग्जाम्स वो देते हैं टीचर बनने की, प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो उनको भी ये बात सिखाई जाती है कि आपको अपने टॉपिक का नाम पहले नहीं बताना है, पहले जाना है, स्टूडेंट को कुछ प्रश्न पूछना है या कोई ऐसी स्टोरी बतानी है और उनको मॉरल पूछना है, या कोई ऐसे प्रश्न पूछने हैं कि आपको इसका उत्तर बताना है, और बाद में पढ़ने के बाद फिर उनको पूछते हैं कि अब बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो बिल्कुल उसी तरह सुनाने वाले टीचर को क्या करना है, मुरली पढ़ के कोई ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं और उस प्रश्न को क्या करना है, पूछना है, और फिर मुरली सुनाने के बाद फिर उनसे रिप्लाई लेना है कि हाँ पहले आपको ये बात पूछी थी तो आप बताओ आंसर, और फिर मुरली में से उनको होमवर्क भी देना है, सामने वाले को होमवर्क भी देना है। बाबा तो मुरली में देते ही है, लेकिन हमें उसको उसी होमवर्क को थोड़ा हाईलाइट करना है कि आज बाबा ने ये होमवर्क दिया है। फिर टेंथ है कि समय पर पूरा करना, कि ये बात कई बार क्या हो जाता है, सामने वाले सुन रहे हैं तो बोलने वाले को बहुत ही मजा आता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति बैठा है, उसका ऑफिस का टाइम है और उसको हम क्या हो रहा है, उसकी पूरा ध्यान उधर लगा हुआ है कि मेरा टाइम हुआ है, मेरा टाइम, वो घड़ी की तरफ देख रहा है और हम खींचते जा रहे मुरली लंबी, तो समय का ध्यान रखना है। नहीं 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 2 घंटा मुरली ये कोई रूल नहीं है। सुनने वाले दुखी है, सुनाने वाले को मजा आ रहा है, वो 2 घंटे तक चला रहा है मुरली, तो हाँ इसलिए मैंने भी कभी डांट खाई है कि आप टाइम के नहीं देखते हो और सुनाते जा रहे हैं। इसलिए जो लिखा हुआ है कम से कम, नहीं तो फिर लिखो नहीं, मुरली का टाइमिंग लिखो ही नहीं, अगर लिखा हुआ है तो उसके ऊपर चलना है बॉडी रमणीकता के साथ। हाँ, अभी मुरली सुनाते समय हमने जो देखा दादी जी को, है ना, बड़ी दादी को, जानकी दादी भी जब आती है तो एक तो दादी मुरली क्लास में आने से पहले बाबा के कमरे से होके आती है, फिर सबको योग कराती है, फिर दादी क्या करती है, मुरली उठाती नहीं है तुरंत, उस मुरली को दादी पहले ही स्टडी करके आती है। रात को मैंने देखा है 10 बजे भी दादी मुरली लेके बैठी हुई थी, और फिर दादी पहले अपना चिंतन सुनाती है मुरली के ऊपर और बाद में मुरली शुरू करती है, और जब दादी मुरली शुरू करती है तो रुकती नहीं है, और इतना समय पर इतना अच्छे से, पता भी नहीं चलता कि अभी मना समय पर पूरी हो जाती, समय पर पूरी मुरली क्या हो जाती है, पूरी हो जाती। और दादी जब मुरली होने के बाद जाती है तो मैंने देखा कि दादी जो संदली के पीछे लगा हुआ बाबा का चित्र है, फोटो है, ट्रांसलाइट है, तो दादी क्या करती है, बाबा से दृष्टि लेती है, और बाकी आजू बाजू वाले कुछ बोल रहे हैं तो उनको चुप कराती है और बोलती है दृष्टि लो बाबा से। मुख से कुछ बोलती है नहीं है, इशारे से, कि मुरली के पहले भी मौन का बहुत जरूरी है और मुरली के बाद भी मौन की गहराई, सुनने वाले को भी सुनाने वाले को। और फिर अभी अभी कहा कि मनोहर दादी, तो मनोहर दादी को मैंने देखा ज्ञान सरोवर में, कि है ना, जैसे मुरली धर की वो एक सच्ची सच्ची गोपी मैंने देखा उनको ज्ञान सरोवर में, एक पहली टाइम ही देखा वहां पर, कि वहां गुरुवार के दिन क्या होता था, भोग पहले लगा देते थे, भोग पहले, बाद में 7 का गीत बजेगा और फिर बाद में मुरली। तो दादी की भी विशेषता मैंने देखी कि दादी पूछती थी कि आज क्लास में पहला कौन आया, आज क्लास में पहला कौन आया, जिसने दरवाजा खोलते से बाबा को पाया और कोई नहीं था क्लास में, तो वो कौन है भाग्यवान, वो पर्सनल मीटिंग मनाने जो पहुंचा, तो उसको दादी स्टेज पर बुलाती थी और गुलाब का फूल देती थी। तो कितनी खुशी होती थी उस आने वाले व्यक्ति को कि हाँ, मेरा भी, मुझे भी किसी ने, दादी जी ने पूछा। तो हम ऐसी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, हाँ, अगर आप अथॉरिटी हो तो, नहीं तो सामने 80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं और आप उनको रिवॉर्ड कर रहे हो, बहुत युक्ति से चलना पड़ेगा, सामने कौन बैठा है, समय, स्थान, व्यक्ति, वो देख के ये सब क्रिएटिविटी हमें करनी पड़ेगी। हर बाबा के इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। तो चक्रधारी बहन जी का उदाहरण हमने अभी सुना कि कोई बड़ा व्यक्ति सामने बैठा हुआ है और अभी कैसे कहे कि आप सो रहे हो, तो बड़ी युक्ति से कि अभी सभी अपने आंखों को हाथ लगा कर देख लो कि हम कहाँ है। हाँ, अगर कोई सामने झुटका ले रहा है तो रशिया वाले अपने संतोष दीदी जो है वो क्या करते हैं, सभी को बीच में ही खड़ा कर देते हैं कि अभी खड़े रहो थोड़ा। तो बिल्कुल उसी तरह ब्रह्मा बाबा भी मुरली के बीच में रमणीकता कराते थे, सुहेज कराते थे, मना बिल्कुल कभी कभी छत पर भी ले जाते थे, बड़ी दादी भी कभी कभी गार्डन में ले जाती थी मुरली सुनाने के लिए, कभी शांति स्तंभ के आगे, और कभी कभी मुरली के बीच में अनाउंसमेंट कर देती थी कि आज तो आपको आइसक्रीम मिलेगा, आज तो आपको पूरनपोली मिलेंगी, मना ऐसे बीच बीच में अनाउंसमेंट कर दो तो सामने वाला रमणीकता में आ जाए। नहीं नहीं चलेगा, फिर आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, विश्वास को तोड़ना नहीं है, मुरली सुनाने वाले को है ना अपने शब्दों का सही सही उपयोग करना है, बहुत नपेतुले हो सामने वाले को, हाँ, ऐसे न हो, क्योंकि वो भगवान की गद्दी है और ऐसे नहीं कि किसी का विश्वास उड़ जाए, टूटे।
मुरली के बाद फिर किसी को बुला के पूछ सकते हैं कि मैं 5 मिनट मुरली के बारे में सुनाओ।
हाँ,
पहले से पता रहना चाहिए।
हाँ, पहले से कोई सुनते समय हमने कितना सुना, एक व्यक्ति किसी को अचानक बुलाया जाएगा,
अचानक
2 मिनट
कई सेंटर पर ऐसे होता है,
पहले से बता के रखा, तुमको सुना।
कई सेंटर पर ऐसे होता है, मुरली के पहले कल की जो मुरली है उसको छोटी बहन रिवाइज करती है, या वो फिर कोई स्टूडेंट है वो पता होता है उनको कि कल किसको सुनाना है। मतलब स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो भागने वाले होते हैं कि हम कैसे यहाँ से छूट जाए, हमें बोलना नहीं है, और कई होते हैं जिनको बोलने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है, उमंग गुस्सा होता है, और फिर सामने वालों को लिए वो मुसीबत बन जाते हैं। तो दोनों बातें संभालनी पड़ती है टीचर को। कि सचमुच प्रैक्टिकली देखा है, एक बुजुर्ग थे, उनको इतना उमंग गुस्सा था, उनको वरदान स्लोगन पूरा याद होता था, आज का कल का परसों का जो भी पिछले हैं वो भी याद रहता था, तो और किसी को बोलने ही नहीं देते थे। तो वो टीचर उनको पहले ही डांट देती थी, अभी मैं वरदान सुनाने वाली हूँ, आप चुप रहेंगे क्योंकि बाकी को लोगों को भी चांस मिले। तो उनको पहले ही चुप कराया जाता था, तो वो बड़े अंदर से ये होके बैठते थे कि क्यों मुझे सुनाई नहीं, सुनाने नहीं देते। हाँ, तो उनकी महिमा करनी है कि देखो क्लास में बस यही बता सकते हैं, आप लोग बता ही नहीं सकते हो, तो अभी आप चुप रहो। माने बड़ी युक्ति के साथ, बड़े युक्ति के साथ उनको चुप करना है, क्योंकि कोई हमारे से अनगिनत बार, क्योंकि मैंने पढ़ना ही सीखा है, पढ़ना ही सीखा है मुरली से, तो मुरली तो बचपन से ही पकड़ा दी गई है हाथों में। सुनाना ही ना संदीपन, सुनी कम है सुनाई ज्यादा है। सुनाई ज्यादा है, तो सुनना कैसे है वो ज्ञान सुधा में है, और ज्ञान सरिता में भी है, वो तो 108 मुरली चर्निंग मेथड्स, वो तो आपको मिल जाएगा सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप। मुरली चर्निंग कैसे करनी है, 108 विधियां है, तो वो भी बड़ी रमणीकता से हमने सुना है। वही 108 मेथड जो है मुरली के,
संकल्प नहीं आ रहा पकड़ने का, तो मुरली आगे पड़ी है, वो विचार ही नहीं पैदा था उसको।
हाँ, वही गुरु नानक जी को ऐसे ही एक व्यक्ति ने पूछा कि कैसे मैं इन पांच विकारों से छूटू, ये घड़ा जो है, तो गुरु नानक जी ने उसको बोला कि ये जो मिट्टी का घड़ा है उसको 5 छेद है, अब इसको भरना है तो कैसे भरोगे। तो उन्होंने कहा कि उसको डुबाए रखो, भरा रहेगा। बिल्कुल उसी तरह इच्छा ही नहीं है सुनने की, है ना, इच्छा ही नहीं हो रही है पढ़ने की। हाँ, वो क्या, वही तो बातें हैं। तो भी दादी जानकी ने भी बताया, भले घड़ा सुलटा हो ही नहीं रहा है, उल्टा रखो, मिट्टी का है ना, ठंडा तो रहेगा, दूसरे को तकलीफ तो नहीं होगी उतने समय तो। और बाबा ने भी यहाँ कहा, हाँ आते रहो, बस आते रहो, एक नियमिनाथ बन जाओ, कोई बात नहीं, नियमिनाथ उसमें भी सेवा समाई हुई है, क्योंकि आप आएंगे सफेद कपड़ा पहन के, 1 किलोमीटर दूर से आ रहे चल के, तो उसमें सेवा समाई हुई है। और फिर बाप दादा ने भी इधर ही ओम शांति भवन में कहा हुआ है कि जैसे भगत लोग पढ़ते हैं, पढ़ते रहो, भले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 10 मिनट पढ़ेंगे तो 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट भी आपका क्या होगा, बाबा से योग लग जाएगा। पढ़ते रहो जैसे भगत लोग पढ़ते, और उस समय विकर्म तो नहीं होगा। बेचारे लोग, भगत लोग पढ़ते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, आप भी पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ होगा जरूर। माना उतना समय हम व्यर्थ से मुक्त तो रहेंगे। और मधुबन की विशेषता जैसे हमने सुनी है कि यहाँ अखंड योग चलता रहता है, बाबा के कमरे में है, तो उसी तरह मुरली की भी विशेषता मैंने देखी है कि जैसे ही अमृत वेला होता है, एक तो मेडिटेशन हॉल में मुरली चलती है, उसके बाद आंगन में देखो चंद्रशेखर भाई पढ़ रहे होते हैं, फिर हम इधर से अभी जाएंगे तो चंद्रपाल भाई मुरली पढ़ रहे हैं, फिर इधर आएंगे तो ओम शांति भवन में मुरली चल रही है, यहां से हम जाएंगे पिछले गेट पर देखो तो मुरली भाई जी पूरी मुरली लिखते हैं, मूर्ति भाई जी, मीठे बच्चे से लेकर स्लोगन तक पूरी मुरली लिख लेते हैं। ये मुरली की जो विशेषताएं है वो मधुबन में बहुत देखने को मिलती है। निखिलेश भाई जी के पास जाएंगे आर्ट डिपार्टमेंट में, उनका रेडी होता है आज की मुरली के ऊपर, और दोनों भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तीसरी भाषा भी होती, बंगाली में भी चित्र निकाल के। हाँ, लाइब्रेरी की भी एक विशेषता है, कौन सी भी मुरली हाथ में लेकर बैठो, सामने वाले को वही मुरली चाहिए होती है, बोलेंगे वो हमें दे दो। कुछ भी, एक नोटिस बोर्ड होता है ना, डिस्प्ले होता है, म्यूजियम होता है, किसी शॉप में या किसी मॉल में बाहर स्टैचू को कोई कपड़ा पहनाया जाता है, तो कई लोगों का होता है, हाँ मुझे यही पहनना है। कोई हीरो होते हैं तो लोगों का होता है कि हमें वही जर्सी पहननी है, वही उस हीरो ने पहनी थी। बिल्कुल उसी तरह मैं कुछ भी लेके बैठूं हाथ में, सामने वाले को वही पढ़ना होता है, मुझे दे दो। तो ये हो गई मुरली की मधुबन में विशेषताएं। तो हर एक को अपनी कौन सी विशेषता है, किसी को ड्राइंग बनाना आता है, किसी को मुरली के ऊपर गीत बनाना आता है, किसी को टॉपिक निकालने आते हैं, है ना, आस्किंग मेथड, किसी का क्या होता है। खुद तो मुरली में जाएंगे नहीं, खुद को तो याद नहीं होता है, लेकिन इतना अथॉरिटी से सामने वाले को पूछेंगे, बताओ आज का वरदान क्या है। कि सामने वाले को लज्जा आ जाती है, यार भरी सबके सामने भीड़ के बीच में मुझे वरदान पूछ लिया और याद ही नहीं। तो ये अच्छी मेथड है ना, आस्किंग मेथड। माना खुद भूल गए हैं तो भी हम दूसरे वालों को पूछ सकते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि किसी को आप इरिटेट कर रहे हो, किसी को टारगेट करके ये बात नहीं करनी है। जिसको पता है उनके साथ भी आप चर्चा कर सकते हो, माना पॉजिटिविटी के साथ, ऐसे नहीं कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ऐसे नहीं। अच्छा, ओम शांति।
मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।
मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।